आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10th के साइंस का 14 चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ी उनमें से सबसे अलग है न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी के निकलने का कारण क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोड्यूस होने का कारण है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन हैवी न्यूक्लियस, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, इनके बीच में। इनको हम क्या करते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ बॉम्बार्ड कराते हैं, यानी कि इनके साथ हम टक्कर करवाते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स की, जिनकी एनर्जी कम होती है। तो ऐसे में हमारे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी एटम्स होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के, इनकी जैसे ही दूसरे छोटे न्यूट्रॉन्स के साथ टक्कर होती है, उसके बाद इनमें वो रिएक्शन होने की वजह से, टक्कर होते ही रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से अब हैवी न्यूक्लियाई दे ब्रेक अप इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। और इसी दौरान जब हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करके, टूट करके फॉर्म कर रहे हैं, उसी दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसके पीछे का कारण ये है कि आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन बनाई थी, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्वेशन। इसमें इन्होंने कहा था कि जब ये रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रही है, तो फाइनली जो लाइटर न्यूक्लियस बन रहे हैं इनका जो टोटल कंबाइंड मास होता है, ये पहले वाला जो हैवी न्यूक्लियाई था उसके मास के कंपेरिजन में कम है। तो यहाँ पर मास में अंतर हम लोगों को जो दिखता है, वो सारा का सारा जो अंतर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इनका एक बहुत फेमस इक्वेशन था E=mc² या फिर E=Δmc². डेल्टा एम यहाँ पर क्या है? जो प्रोडक्ट है उनका मास माइनस जो इनिशियल हमने लिया था रिएक्टेंट उसका मास। तो इनिशियल तो आपने हैवी न्यूक्लियाई लिया था, फाइनली आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई है। तो लाइटर न्यूक्लियाई का कंबाइंड मास माइनस पहले जो हैवियर न्यूक्लियाई लिया था उसका मास। तो जो आपको मास डिफरेंस मिलेगा उसको जब आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं, तो इसीलिए अगर ये हमारे कंट्रोल में रह पाती हैं तभी हम इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो दे कैन बी डिजास्ट्रस। ये ह्यूमन काइंड को और दूसरी लाइफ्स को भी, धरती पर जितनी भी लाइफ्स हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा अमाउंट पर नुकसान पहुँचाने की काबिलियत रखती है, ताकत रखती है। उसके बाद जो यहाँ पर फ्यूल का काम कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में, वो कौन है? वो हैवियर न्यूक्लियस हैं, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। इनको हम न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, जहाँ पर हैवियर न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। फिशन रिएक्शन में जो बाद में प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइटर न्यूक्लियस बन गए, तो ये लाइटर न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? ये वेस्ट है, केमिकल रिएक्शन का वेस्ट है। तो इनको डिस्पोज ऑफ करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो वेस्ट निकला है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हो सकता है, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलती हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं, और म्यूटेशन ज़्यादा होने से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस से। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, लेकिन ये फिशन रिएक्शन से अलग है। यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन करके एक फाइनली एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम मिल करके फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है जहाँ पर दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाए, इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन सन में भी होते हैं और दूसरे स्टार्स में भी होते हैं। कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फ्यूजन से जो प्रोडक्ट्स बने हैं हम देख सकते हैं कि वो हजार्डस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फिशन रिएक्शन से बेटर है फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पर भी क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्ट बना है उसका मास उसके इनिशियल रिएक्टेंट से कम है, तो मास एनर्जी इक्वेशन से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर भी जो रिलीज एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि हम लोगों को दो ड्यूटेरियम को फ्यूज कराने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम फिशन रिएक्शन से मिल रही एनर्जी से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर यही एक ड्रॉबैक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी 14.7 पेज नंबर 252। यहाँ पर बोला है डिस्कस इन क्लास द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास विंड एंड ओशन थर्मल एनर्जी। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि बायोमास के लिए अगर आपसे बोला जाए कि बायोमास का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बायोमास क्या होता है, बायोमास जितनी भी जैविक चीजें हैं उनसे जो हम लोग प्राप्त करते हैं एनर्जी वो सारी की सारी बायोमास से मिलने वाली एनर्जी कहलाती है। अब आपसे पूछा गया है कि बायोमास की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स पता लगाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप जो बायोमास यूज कर रहे हो वो कहाँ से आई है। तो देखो बायोमास माने जैविक चीजें, आप लोग बात करो लकड़ी की, वुड अगर आप यूज कर रहे हैं डायरेक्टली बर्न करने के लिए, तो वुड कहाँ से आया है, वुड आपके प्लांट से आया है, ट्रीज से आया है। अब ट्रीज के पास वुड का फॉर्मेशन कब हुआ, वुड का फॉर्मेशन तब हुआ जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस से जो भी उनको एनर्जी मिली उसका यूज करके उन्होंने केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया और प्लांट की ग्रोथ कराई। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बायोमास का कौन हुआ, सन हुआ, क्योंकि सन से जो सूरज की एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, उसी को तो प्लांट्स सूरज की धूप की रोशनी में ही फोटोसिंथेसिस करके केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं प्लांट्स अपने अंदर वो सारा उसका फूड कहलाता है। तो फूड प्रिपेयर करेगा तभी तो प्लांट उसको यूज करेगा एनर्जी के सोर्स को ग्रोथ के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स की या फिर बायोमास की जितनी भी सारी बायोमास है उनको बनने के लिए अल्टीमेटली सूरज की एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ बायोमास क्या कहलाएगा, सोलर एनर्जी कहलाएगा। अब दूसरा है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विंड फ्लो क्यों करता है, विंड फ्लो करता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से के कहने का मतलब ये है कि कुछ जगह होती है जहाँ की विंड ऐसी है जो ज्यादा गर्म है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ की विंड है कम गर्म, ठंडी है रिलेटिवली। तो जो ज्यादा गर्म हवा है वो ऊपर को मूव करेगी, ठंडी वाली हवा जो है वो नीचे को मूव करेगी। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा तभी तो हवा का फ्लो होगा और उसे हम विंड कहेंगे। विंड क्या होता है, बेसिकली विंड होता है फ्लो, हवा का फ्लो, उसे हम विंड कहते हैं। तो विंड तो फॉर्मेशन ही विंड का तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो या फिर प्रेशर डिफरेंस हो। और टेम्परेचर डिफरेंस का अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ धरती पर, फिर से सूरज हुआ, सोलर एनर्जी हुई। सन से जो एनर्जी मिल रही है वो अनइवनली पड़ती है धरती के ऊपर, कुछ जगह पर ज्यादा पड़ती है कुछ जगह पर कम पड़ती है। जैसे अगर आप पोलर एरियाज के बारे में बात करें जहां पर पोल्स हैं, धरती की पोल्स जहां पर है, तो वहां पर सूरज की एनर्जी कम पड़ती है और इक्वेटर वाला एरिया जो है वहां पर ज्यादा पड़ती है। तो इक्वेटर वाला जो हवा है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और पोल्स वाली जो हवा है वो कम गर्म हो जाती है। तो इक्वेटर से हवा मूव करके जाती है पोल्स में और पोल्स से हवा मूव करके आती है इक्वेटर में। तो इस तरीके की मूवमेंट जो हो रही है विंड की, एयर की, तो ये विंड का फॉर्मेशन कर रही है। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी अनइवनली पड़ती है धरती के ऊपर। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी का भी सोलर एनर्जी ही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर भी देखो ओशियन थर्मल एनर्जी में भी आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अनइवन गर्मी जो है वो वाटर में देखने को मिलती है, ओशियन के वाटर में। ओशियन का जो ऊपर का सरफेस वाला वाटर होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, रिलेटिवली ज्यादा गर्म हो जाता है, और अगर नीचे के डेप्थ वाले वाटर की बात करी जाए तो वो रिलेटिवली कोल्डर होता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसी के वजह से हीट जो भी मौजूद है ओशियन के अंदर, ओशियन वाटर के अंदर, उसका हम यूज करते हैं और ओशियन थर्मल एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्यों हुआ, जो ऊपर की सरफेस है उसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन सरफेस के नीचे थोड़ा गहराई पर जो पानी है वो रिलेटिवली ठंडा होता है क्योंकि वहां पर डायरेक्टली सन के रेज नहीं पड़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ओशियन थर्मल एनर्जी का जन्म होता है। तो ओशियन थर्मल एनर्जी का भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी ही कहलाएगा। उसके बाद 14 एक्टिविटी 14.7 में ही नेक्स्ट बोला है इज जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट, व्हाई? न्यूक्लियर एनर्जी तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी से हमें नहीं मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अंतर तो हमें देखने को मिल रहा है कि विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी और बायोमास, इनमें कॉमन क्या है कि इनका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन के वजह से आ रहा है। इसका मतलब केमिकल बॉन्ड्स जो मौजूद हैं हमारे हैवी एटम्स के अंदर या फिर लाइटर एटम्स के अंदर, तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, उससे सोलर एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में और सोलर एनर्जी में बाकी सारे एनर्जीज जो है, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी में अंतर क्या है कि विंड एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है सोलर एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सोलर एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी जो है, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा कि धरती का सबसे भीतर वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, तो इसीलिए वहां पर अभी भी गर्मी मौजूद है। तो वो रिएक्शंस जो है वहां पर भी फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी कि वहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं। तो धरती के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी का भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है एक्टिविटी 14.7 में, वेयर वुड यू प्लेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप एक कैटेगरी बना रहे हैं, कुछ एनर्जीज जो है उनका अल्टीमेट सोर्स सोलर एनर्जी है और कुछ एनर्जी जो है उनका अल्टीमेट सोर्स सोलर एनर्जी नहीं है, तो आप बताओ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ पर आती है और वेव एनर्जी कहाँ पर आती है, क्या ये ऐसी एनर्जीज हैं जो सोलर एनर्जी से मिलती है अल्टीमेटली या फिर नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो वेव एनर्जी की अगर बात करी जाए तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ पानी में जब हमारे ओशियन में या फिर समुद्र में वेव्स क्रिएट होती हैं तो उससे हम लोगों को वेव एनर्जी मिलती है। और वेव्स क्यों क्रिएट होती हैं? वेव्स क्रिएट होती हैं तेज हवा चलने की वजह से। तो हवा अल्टीमेटली कहाँ से, हवा का चलना जो है वो अल्टीमेटली कहाँ से हो रहा है? सोलर एनर्जी से हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से विंड का फ्लो होता है, और अगर विंड का फ्लो तेजी से हो रहा है तो अगर ओशियन के इलाके में ज्यादा तेज विंड फ्लो करती है या फिर समुद्र के इलाके में करती है तो वहां पर क्या होता है, तेज विंड के फ्लो की वजह से वेव्स जनरेट होती है पानी के अंदर, तरंगे जनरेट होती हैं जिनसे वेव एनर्जी मिलती है। तो वेव एनर्जी का भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हुआ वो सोलर एनर्जी ही हुआ। अब अगर बात करी जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने पढ़ा हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम डैम्स का क्रिएशन करते हैं और हाइट पर से जब पानी गिरता है टर्बाइन पर पड़ता है तो वहां उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। तो या तो आप ये बात करो कि डैम्स आपने क्रिएट करी हैं तो वहां पर वाटर के फ्लो की वजह से टर्बाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान होगा कि आपने टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि पानी का लेवल इंक्रीज होता है ओशन के पानी का, कभी कभी तो लेवल इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी सन की वजह से होता है। तो या तो आप सन को कह सकते हैं या फिर वैसे तो मेनली यहाँ पर मून को कहा जाता है कि मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती के ऊपर ये जो टाइड्स हैं इनका लेवल कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टाइडल एनर्जी क्रिएट होती है। और यहाँ पर भी हम बेसिकली जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पानी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी भी कह सकते हैं। और अगर बात करी जाए डैम्स वगैरह जो हम बनाते हैं रिवर पर, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम सोलर एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसमें हम लोग सोलर एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं, हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 253 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर एंड व्हाई। तो आप लोगों को ध्यान भी होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर सोलर कुकर हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करती है कि डायरेक्टेड बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे और उसे कुछ इस तरीके से डायरेक्ट करोगे कि सारी जो लाइट पड़ रही है वो आपके फूड मटेरियल पर पड़े, तो उससे क्या होगा कि आपका फूड बहुत जल्दी वो पक जाएगा, इट विल बी कुक्ड अर्ली। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर जो है वो जो भी उस पर लाइट फॉल करती है उसे वो बीम का फॉर्मेशन करवाती है उससे, इसीलिए हमें कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशियंस। ओशियन से हम लोग को कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, टाइडल एनर्जी मिलती है, वेव एनर्जी मिलती है और ओशियन थर्मल एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी मिल रही है इनको हम ऑब्टेन तो कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन लिमिटेशंस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है वो भी हमें देखने हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग टाइडल एनर्जी की, तो टाइडल एनर्जी जो हम लोग को मिलती है वो वाटर के लेवल के डिफरेंस की वजह से मिलती है। अगर ज्यादा हो जाएगा वाटर का लेवल, तो जैसे ही वो वाटर लेवल फॉल करेगा, तो फॉल करते ही वो फॉल जैसे ही करे, तो वो टर्बाइन पर अगर फॉल करे तो टर्बाइन के रोटेट होने से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग टाइडल एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइडल एनर्जी आप लोगों को हर जगह मिल जाएगी, टाइडल एनर्जी कुछ ही लोकेशंस पर आपको मिलती है, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि टाइडल एनर्जी आप लोगों को यूज करने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी डैम्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो ये दूसरी एक लिमिटेशन है। उसके बाद अगर बात करी जाए नेक्स्ट वेव एनर्जी की, तो वेव एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाई वेव्स चाहिए, बड़ी बड़ी तरंगे चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि वहां पर विंड बहुत तेजी से फ्लो करे, ओशन के एरिया में विंड बहुत तेजी से अगर फ्लो करेगा तो वहां पर हाई वेव्स का फॉर्मेशन होगा, वेव्स का ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आप वेव एनर्जी का यूज कर पाएंगे। तो अगर वेव एनर्जी का आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि विंड तेजी से फ्लो करे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि साल के पूरे 12 months विंड्स किसी जगह पर फ्लो करती रहेंगी। कभी कभी होता है कि हाई विंड्स फ्लो नहीं करती है, जिसकी वजह से अच्छी वेव्स क्रिएट नहीं होंगी, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो वो ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा आपका प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ओशियन थर्मल एनर्जी की, तो ओशियन थर्मल एनर्जी में हमें क्या चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है पानी के ऊपर वाले सरफेस का और डेप्थ का कम से कम 20 degrees Celsius होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आप लोगों को गर्मी के मौसम में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ठंडी के मौसम में हो सकता है आपको ये ना मिले। तो यहाँ पर भी ये लिमिटेशन है कि साल के 12 months आप लोगों को नहीं मिलेगा, जो ओशियन थर्मल एनर्जी है उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, साल के 12 months आप नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आप कर पाएंगे, अच्छा आपको वहां पर फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन बाकी मंथ्स में आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी सोच के रखने पड़ेंगे एज रिप्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियो थर्मल एनर्जी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जियो थर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली धरती के भीतर से हमें मिलती है, धरती के भीतर वाला हिस्सा जो है वो गर्म है, जिसकी वजह से धरती के क्रस्ट के नीचे हमारे पास मॉल्टन रॉक्स होते हैं। धरती में मूवमेंट की वजह से ये मॉल्टन रॉक्स धरती के ऊपर वाली सरफेस सतह जो है वहां तक आने लगते हैं, और वहां पर जहां पर ये इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। उसके बाद ये जो हॉट स्पॉट्स हैं इनकी टेम्परेचर बहुत हाई होती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं ये। उसके बाद जब इनके साथ अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टैक्ट में आता है तो ये अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर स्टीम का फॉर्मेशन होने लगता है। और इस अंडरग्राउंड वाटर का जो स्टीम का फॉर्मेशन हुआ है इन जिन लोकेशंस में ये होता है इसे हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अब हॉट स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है कि स्टीम का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्टीम को हम टर्बाइन पर डालवाते हैं तो टर्बाइन रोटेट करता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जियो थर्मल एनर्जी का हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या फायदे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का फायदा ये है कि छोटे बहुत मतलब कम ही अमाउंट आप अगर यूज करेंगे तब भी आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ एटम्स यूज करके ही, हैवी एटम्स जो हैं, हैवी न्यूक्लियर के कुछ एटम्स यूज करके ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें कि उतना ही अमाउंट अगर आप किसी कोयले का यूज करते हैं तो वो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही कम होगी, उसके 10 million times ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर एनर्जी से एक फायदा है कि जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही हाई अमाउंट की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फिशन भी आता है, फ्यूजन भी आता है। तो अगर आप फिशन की बात करें तो उससे जो लास्ट में केमिकल्स बच जाते हैं वो हजार्डस होते हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली मिल रहे हैं वो उतने हजार्डस नहीं होते। जैसे हमने बात की थी ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम अगर फ्यूज कर जाए तो हीलियम बनता है, हीलियम इज नॉट पॉइजनस और ये पोल्यूटेंट भी नहीं है। तो इस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन बेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूजन रिएक्शन से जनरेट हो रही एनर्जी की, तो वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में मिलती है, जिस तरीके से फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, और फ्यूजन रिएक्शन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है तो हम कहेंगे कि फ्यूजन रिएक्शन बेटर है और इससे हम लोग को फायदे होते हैं, क्योंकि एनर्जी भी जनरेट होती है और पॉल्यूशन भी उतना जनरेट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर्स लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे हैं कि वो एनवायरनमेंट को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो नुकसान पहुंचाते हैं। हम लोग बात करते हैं कि सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये रिलेटिवली थोड़ी पॉल्यूशन कम कॉज करती है। अगर हम लोग डीजल की बात करें या फिर पेट्रोलियम की बात करें, तो इनसे जो वेस्ट जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस जनरेट करती हैं डीजल्स और पेट्रोल। लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में कम पोल्यूशन कॉज करता है और रिलेटिवली कम पॉइजनस गैसेस भी रिलीज करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है, कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं जो बिल्कुल ही क्लीन हो, उससे कोई डैमेज हो ही ना हमारे एनवायरनमेंट को। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ डैमेज हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचाते ही हैं। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करोगे, सोलर एनर्जी को यूज़ करने में तो बिल्कुल ही कोई डैमेज नहीं होता एनवायरनमेंट को, लेकिन सोलर पैनल्स को बनाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा हमारे एनवायरनमेंट को। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लीन है, उसमें कहीं कोई नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी को यूज़ करते करते हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचाते हैं हमारे एनवायरमेंट को। इसी पर बेस्ड एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 14.8, पेज नंबर 253। इसमें बोला है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एनर्जी सोर्सेज एंड हाउ ईच वन अफेक्ट द एनवायरनमेंट, डिबेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड सिलेक्ट द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस बेसिस। तो यहाँ पर देखो, अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, फॉसिल एनर्जी। तो फॉसिल एनर्जी जो में जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनसे जब हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो इन्हें हमें बर्न करना पड़ता है, जिससे कि पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और एक और डिमेरिट ये है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास लिमिटेड सोर्स ही है, उसका लिमिटेड रिजर्व है, तो हम इसे ज़्यादा सालों तक नहीं यूज़ कर सकते, तो ये भी एक डिमेरिट है। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स में हमने क्या किया था, हमने कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी, स्टीम को जनरेट करके उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। तो यहाँ पर भी हम फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने अगला पढ़ा था हाइड्रोथर्मल प्लांट्स। तो इसमें हमने देखा था कि हाइड्रोथर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि आप डैम्स का क्रिएशन करते हैं और पानी की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके बाद आप उसको टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रोसेस जो है, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अगर हम डैम के क्रिएशन के बारे में बात करें, तो डैम की जब क्रिएशन हुई है तो उससे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। जिस एरिया में डैम को बनाया गया है, उसके लिए पहले वहाँ के पेड़ पौधों को हटाया गया होगा, लोगों को हटाया गया होगा, जीव जंतुओं को हटाया गया होगा, जिससे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ है। तो कुछ ना कुछ पोल्यूशन यहाँ पर भी कॉज होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी में हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी में हम विंड मिल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए भी हमें वहाँ की जो पूरी एरिया होती है उसे क्लियर करना पड़ता है, वहाँ के पेड़ पौधों को सबको हटाना पड़ता है, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, विंड मिल्स लगा देते हैं। तो अगर देखा जाए विंड मिल में भी हम लोग विंड मिल की क्रिएशन करने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो पोल्यूशन है वो कॉज करते हैं एनवायरमेंट को, लेकिन वैसे देखा जाए तो विंड एनर्जी एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में बात करी थी। सोलर एनर्जी भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन सोलर पैनल्स को क्रिएट करते वक्त उनके कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंट को थोड़ा नुकसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बायोफ्यूल्स की, तो बायोफ्यूल्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिग्रेड कर दे रहे हैं, जिससे कि वो वापस से कन्वर्ट हो जा रहे हैं इनटू यूजेबल फॉर्म्स, मेन्योर का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, साथ में आप लोगों को बायोगैस भी मिल जाएगी जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस के बर्न होने में, जब आप उसे बर्न करेंगे तो रिलेटिवली कम स्मोक पैदा होती है, कम पोल्यूशन कॉज होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन्स है तो इनसे भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो हमारे एनवायरनमेंट में कॉज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ओशियन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, इस तरीके से ये सारी एनर्जीज देखी जो हमें समुद्र से मिलती हैं। तो इन सबको भी प्राप्त करने में हम लोगों को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे पोल्यूशन कॉज हो जाता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है अगर हम फिशन रिएक्शन के बारे में बात करें। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटिंग है। तो अगर सारी एनर्जीज के बारे में देखें, तो मैं कहूँगी कि एक तो बायोफ्यूल जो है वो ज़्यादा अच्छा एनर्जी है, बायोमास, तो एक ये सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा है। दूसरा है सोलर एनर्जी, और तीसरा है फ्यूजन रिएक्शन से मिलने वाली एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी फिशन नहीं, फ्यूजन वाली एनर्जी जो है वो अच्छी है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने क्लास में डिबेट कर सकते हैं कौन कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों को बेस्ट लग रही है और कारण क्या है। उसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन और दिए हैं आपको पेज नंबर 253 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अल्टीमेटली पोल्यूशन फ्री हो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसने हमारे एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए जो डिवाइस हमने बनाया हुआ है उसके कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नो एनर्जी इज अल्टीमेटली पोल्यूशन फ्री, कहीं ना कहीं इट डैमेजेस द एनवायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसिडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी, व्हाई और व्हाई नॉट। हाँ, आजकल जो रॉकेट वगैरह होते हैं वहां पर साइंटिस्ट हमेशा हाइड्रोजन ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉज हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है यानी कि यूनिवर्स में हम कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करना चाहते। जब हम लोग कोई रॉकेट यूज करते हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं तो पर्पस यही होता है कि हम आउटर स्पेस के अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं कॉज करना चाहते, क्योंकि उससे फिर धीरे धीरे जो नुकसान होने लगेंगे उसे हम वापस से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन ही यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो है सीएनजी में भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। इनको जब आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो जनरेट होंगे ही। हाँ, ये होता है कि लेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होता है, एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल अगर आप यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो आउटर स्पेस में हम जब यूज करेंगे तो वहां पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं कॉज होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन को ही एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो देखो, अगर आप फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करो तो फॉसिल फ्यूल का तो आपने पढ़ा हुआ है बहुत कम रिजर्व है हमारे धरती में मौजूद। अगर आप उसे ब्लाइंडली यूज करते जाएंगे तो एक बहुत कम टाइम में ही ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हो सकता है 100 साल 2 साल में ये खत्म हो जाए, तो एक या दो जनरेशन ही यूज कर पाएगी फॉसिल फ्यूल्स को। उसके बाद की जो जनरेशन आएंगी उनको कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेगा टू यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल की ये अंधाधुंध यूज जो है इसको हमें डिक्रीज करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन को सोर्स ऑफ एनर्जी की कमी ना पड़े। तो इस तरीके से बाकी अगर दूसरे एनर्जीज के बारे में बात करें, बायोमास के बारे में, तो अगर आप कंटिन्यूअसली पेड़ पौधे उगाते रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड यू वुड बी एबल टू यूज बायोमास फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बायोमास है उसको आप ज्यादा समय तक यूज कर पाएंगे अगर आप पेड़ पौधे कंटिन्यूअसली लगाते हैं। आप अगर यूज कर रहे हैं पेड़ पौधों को तो आप दूसरे पेड़ पौधे लगा भी दीजिए ताकि आप लोगों को वापस से यूज करने को मिल जाए। और अगर टाइडल एनर्जी के बारे में बात करें, वेव एनर्जी के बारे में बात करें, तो ये जो एनर्जीज हैं दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जब तक सोर्स ऑफ एनर्जी सन है हमारे पास, तब तक हमें विंड एनर्जी मिल जाएगी, सोलर एनर्जी मिल जाएगी, ओशन थर्मल एनर्जी मिल जाएगी और टाइडल एनर्जी भी हमें मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रो थर्मल एनर्जी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पानी की मूवमेंट की वजह से पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली पानी की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। कुछ एनर्जी ऐसी है जो रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल कौन सी नहीं होती है, जिनका रिजर्व बिल्कुल फिक्स्ड है और वो उसे हम वापस से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। अगर फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं तो उसमें आप देखो कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं और यूज करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है कि अगर आपने अभी यूज कर लिया तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल बाद आपको वापस से उतना ही फॉसिल फ्यूल मिल जाएगा, आप उसे वापस यूज कर पाएंगे। तो ऐसा ना होने की वजह से ऐसे एनर्जी को जो हम वापस से नहीं प्राप्त कर सकते, अगर एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। तो इसलिए हम ऐसे फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कहेंगे या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहेंगे। लेकिन ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या फिर विंड एनर्जी हो गया, तो ऐसी एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 254 पर आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 14.9, डिबेट द फॉलोइंग टू इश्यूज इन क्लास। फर्स्ट है, द एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स आर सेड टू बी इनफ टू लास्ट अस फॉर अनदर 200 इयर्स, डू यू थिंक वी नीड टू वरी अबाउट कोल गेटिंग डिप्लीटेड इन दिस केस, व्हाई और व्हाई नॉट। देखो, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोयले का रिजर्व आपके धरती पर इतना है कि 200 सालों तक वो चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि 200 सालों बाद धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा, ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, 200 सालों बाद भी लोग रहेंगे, तो उनके लिए क्या बचेगा? उनके लिए जो कोयला होगा वो खत्म हो चुका होगा, वो सारा हम यूज कर चुके होंगे। तो इसीलिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि कोयला अगर 200 सालों बाद बिल्कुल ही सारा खत्म हो जाता है तो ये एक टेंशन की बात है, क्योंकि 200 सालों बाद जो जनरेशन आएगी उसको कुछ भी यूज करने को नहीं बचेगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद दूसरा है, दूसरा जो इशू है जिस पर आपको डिबेट करना है वो ये है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट सन विल लास्ट फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स, डू वी हैव टू वरी अबाउट सोलर एनर्जी गेटिंग एग्जॉस्टेड, वाई और वाई नॉट। तो हाँ, ये तो एक अच्छी बात है कि सोलर एनर्जी के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो हम लोगों को अनदर फाइव बिलियन ईयर्स तक मिलती रहेगी, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टाइम गैप है। तो अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो एक ये अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है इसी एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी 14.9 में ही, ऑन द बेसिस ऑफ द डिबेट डिसाइड विच एनर्जी सोर्सेज कैन बी कंसिडर्ड एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो देखो, जो एग्जॉस्टेबल है वो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। अगर जल्दी खत्म हो जाता है इसका मतलब वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है? फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, ये सारे के सारे जो एनर्जीज हैं ये कैसे हैं? ये नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल माने खत्म हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। और जो इनएग्जॉस्टेबल है दे आर रिन्यूएबल, अगर वो खत्म नहीं होते इसका मतलब वो वापस से मिल जाते तभी तो वो खत्म नहीं हो रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से है? सोलर एनर्जी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जनरेट करते हैं डैम वगैरह से वो भी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी है, ओशन से जितनी भी हमारे को सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिलती हैं जैसे कि हमारा ओशन थर्मल एनर्जी हो गया या फिर टाइडल एनर्जी हो गया या फिर वेव एनर्जी हो गया, सारे के सारे रिन्यूएबल हैं। साथ ही में जियो थर्मल एनर्जी जो है वो भी धरती के अंदर की जब तक गर्माहट रहेगी तब तक हमें जियो थर्मल एनर्जी भी मिलता रहेगा, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टेबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक्टिविटी 14.9 करनी है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 254 पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, दो क्वेश्चंस। नेम टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल, कौन कौन से दो एनर्जी सोर्सेज आपको लगता है कि वो रिन्यूएबल हैं, वापस से हमको मिल जाती है? एक तो सोलर एनर्जी आप लिख सकते हो, दूसरा आप लिख सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको मिलती है डैम वगैरह क्रिएट करने से, विंड एनर्जी भी लिख सकते हो, तो कोई भी एनर्जी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप, और इसके पीछे का कारण क्या है? विंड एनर्जी जो है जब तक हमारी धरती पर विंड का फ्लो होता रहेगा तब तक हम लोग विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये रिन्यूएबल है, वापस से हमें मिल जाती है, इनके खत्म होने की चिंता हमें नहीं करनी पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम्स ऑफ टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टेबल, कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज आपको लगते हैं कि वो एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाते हैं? एक तो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का अमाउंट जो है वो हमारी धरती पर रिजर्व्ड है, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते क्योंकि उसके बनने के प्रोसेस जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि हमें वापस से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो मिलेगा भी तब तक के लिए हम जीवित नहीं होंगे। तो इसीलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को कंसिडर करते हैं एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा हो सकता है वुड, अगर आप वुड के बारे में बात करें, वुड एक बायोफ्यूल है, तो हो सकता है कि आप अगर लकड़ी चाहते हो यूज करना ज्यादा समय तक तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वापस से ट्रीज प्लांट करनी होगी। अगर आप ट्रीज प्लांट नहीं करते हैं तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रीज प्लांट करते रहते हैं तो ये रिन्यूएबल हो जाएगा। तो वुड को आप रिन्यूएबल के तौर पर तब लेंगे अगर आप कंटिन्यूअसली ट्रीज प्लांट करते रहते हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है तो इसकी वजह से ट्रीज तो ज्यादा कट रही हैं, जितनी प्लांटिंग नहीं हो रही उससे ज्यादा काटी जा रही हैं ट्रीज, तो वुड को भी हम एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन, आपको बताना है कि आप सोलर वाटर हीटर जो है उसको कब यूज नहीं कर सकते हैं, सनी डे पर, क्लाउडी डे पर, हॉट डे पर, विंडी डे पर। अगर धूप अच्छी खिली रहेगी तो ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हैं, अगर क्लाउडी डे रहेगा यानी बादल घिरे रहेंगे तो आप उस वक्त सोलर हीटर नहीं यूज कर पाएंगे, सोलर वाटर हीटर नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि बादल खिले रहेंगे तो उससे क्या होगा कि धूप को ब्लॉक कर देंगे, तो आप अपना वाटर हीटर सोलर वाटर हीटर नहीं यूज कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, कौन, इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि कौन से जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स ऐसा है जो बायोमास से नहीं मिला है। पहला है वुड, दूसरा है गोबर गैस, थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी और डी है कोल। कोल देखो हम लोग को अल्टीमेटली मिलता तो पेड़ पौधों से ही है,
धरती के अंदर कंप्रेशन होता है, पेड़ पौधों की जो लकड़ियां थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उनका कंप्रेशन किया गया तो कोल का फॉर्मेशन हुआ। तो अल्टीमेटली कोल जो है वो भी हम लोग को किसी जीव से ही मिला है, और वुड भी है, गोबर गैस भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये किसी भी जीव से हमें नहीं मिलता, तो ये बायोमास का सोर्स नहीं है। तो न्यूक्लियर एनर्जी विल बी योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। सॉरी, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी, कौन सा जो है वो सन की एनर्जी से अल्टीमेटली हमें नहीं मिल रहा है। विंड एनर्जी हम लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। न्यूक्लियर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं से भी सन का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। बायोमास की अगर बारे में बात की जाए तो बायोमास जो है ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही कहलाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में जितनी भी उनकी केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, जो भी कंपाउंड्स उन्होंने बनाए हैं वो उन्होंने सोलर एनर्जी का यूज करके ही बनाए हैं। तो बायोमास और विंड एनर्जी दोनों के दोनों जो हैं दे आर अल्टीमेटली सोर्सेज ऑफ सन्स एनर्जी। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड सन एज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल को और सन से जो प्राप्त हो रही है सोलर एनर्जी, इन दोनों को सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तौर पे इनमें आप डिफ्रेंशिएट करिए। कंपेयर करने का मतलब है तुलना करेंगे तो अंतर बताएंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है अगर उन्हें हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का रिजर्व धरती पर बहुत कम है, लिमिटेड है, जो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में फॉसिल फ्यूल को बनाता है। अगर सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो सोलर एनर्जी जो है ये सन से आता है, सन जो है वो अनदर बिलियन ईयर्स के लिए अभी भी रहेगा, तो हम सन से मिल रही सोलर एनर्जी को कहेंगे कि वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्योंकि सन का सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है तो वो नॉन एग्जॉस्टेबल है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टेबल हैं। फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। अगर सोलर एनर्जी के बारे में बात की जाए तो सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमें सोलर पैनल बनाने होते हैं, लेकिन रिलेटिवली कम पॉल्यूशन कॉज होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम कहेंगे कि सोलर एनर्जी का यूज़ बेटर है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल का यूज़। तीसरा, कोयला और पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए हर एक कंट्री जो है वो बहुत खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा उनको पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पर कोयला और पेट्रोलियम नहीं मिलता है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहाँ के पास, जिनके धरती के नीचे कोल और पेट्रोलियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर हम हमारे कंट्री के बारे में बात करें तो हमारे पास इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं है, और अगर है भी तो हमने अभी उतना एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अपनी धरती से नहीं एक्सट्रैक्ट किया, तो हमें खरीदना पड़ता है, दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है जिसमें बहुत पैसा लगता है, तो इसीलिए रिलेटिवली ये महंगे होते हैं कोल और पेट्रोलियम। और अगर सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो सोलर एनर्जी सन से मिल रही एनर्जी है, सोलर एनर्जी तो एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए जो डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता है सोलर पैनल, वो थोड़ा महंगा होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा महंगा है। अभी भी कंपैरेटिवली देखा जाए तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो मिडिल क्लास लोगों के लिए यूज़ करने लायक होते हैं, सोलर पैनल्स लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी सोलर पैनल जो है वो कंपैरेटिवली महंगे हैं। अगर हमारे देश में बनने लगे तो शायद थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। उसके बाद अगला है कि आप लोगों को अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई फॉसिल फ्यूल तो उसे आपको बर्न करना होता है, तो ऐसे में आप व्हीकल्स में उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर सोलर पैनल के बारे में बात करें तो सोलर पैनल को आपको बड़े एरिया में लगाना पड़ता है, मान लो छत के ऊपर आपने लगाया है, रूफ टॉप पे लगाया है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप कोई व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोलर पैनल को, बहुत बड़े से सोलर पैनल को अपने व्हीकल के ऊपर कैरी करके कहीं पर ले जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा जो हमारा सोलर एनर्जी है। अगर उसके बारे में बात करें तो सोलर पैनल्स का इजी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, डीजल और पेट्रोलियम का, फॉसिल फ्यूल्स का कंपैरेटिवली इजी ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंतर लिख सकते हैं बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड सोलर एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंड एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बायोमास से जो एनर्जी मिलती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है, इन दोनों में अंतर बताना है, इनमें कंपैरिजन करना है। तो देखो, बायोमास से जो हमें एनर्जी मिलती है वो बेसिकली जितनी भी जैविक चीज़ें हैं उसमें से मिलती है, जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनसे मिलती है। उनको हम लोग अगर बायोगैस प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बायोगैस प्राप्त करने के लिए जितनी भी डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं विद काउ डंग, और उसके बाद उनको हम एनारोबिक कंडीशन में छोड़ देते हैं। वहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। और अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हमें जहाँ पर भी रिवर वगैरह है वहाँ पर हमें डैम बनाने होते हैं। तो रिवर वाटर जो है जब उसका लेवल बढ़ जाता है, फिर उसका लेवल बढ़ते ही जैसे वो वापस फॉल करेगा तो उसके फॉल करने में उसमें कुछ ज़्यादा फोर्स से वो फॉल करेगा, और ये फोर्सफुल वाटर टर्बाइन पर पड़ती है, टर्बाइन रोटेट करता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो बायोमास से जो हम लोगों को अगर बायोगैस अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्राप्त करने का तरीका बेटर है, क्योंकि उसे आम आदमी भी अपने घरों में बना सकते हैं। लेकिन डैम्स वगैरह जो है वो लार्ज स्केल पे बनते हैं, उसे गवर्नमेंट ही बना सकती है या फिर बड़ी कंपनीज बना सकती हैं। तो इस तरीके से अंतर है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड द वेव्स और द टाइड्स। क्या क्या दिक्कतें आती हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम विंड वेव्स एंड टाइड्स। तो विंड से अगर आपको प्राप्त करनी है एनर्जी तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको विंड मिल लगानी पड़ेंगे, बड़ी बड़ी विंड मिल्स जिनका खुद का ही स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज होता है, और एक विंड मिल लगाने से कभी भी आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसलिए आपको कई सारे विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं। तो ये दिक्कत आती है। अगर बात करें वेव्स की, पानी की जो वेव्स होती हैं उनको जनरेट होने के लिए ही विंड चाहिए, और विंड अगर तेज़ी से फ्लो करेगा तभी वेव्स जनरेट होंगी, और वेव्स जनरेट होने के लिए विंड चाहिए, और विंड हमेशा साल के हर वक्त नहीं फ्लो करते हैं। तो उससे आप ये कह सकते हैं कि वेव्स से जो एनर्जी मिलता है वो आपको साल के हर समय नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर टाइड्स के बारे में बात करें तो टाइड्स क्यों जनरेट होती है, टाइड्स जनरेट होती है क्योंकि मून जो है वो सन को एक ग्रेविटेशनल पुल देता है, जिसकी वजह से कभी कभी ओशंस के पानी का लेवल बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो फॉल करता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर डैम बना देते हैं ताकि फॉल करते वक्त वो टर्बाइन पर फॉल करें और टर्बाइन के रोटेट होने से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। तो यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि टाइडल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं। बगैर डैम बनाए आप टाइडल एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल। तो देखो, अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है तो वो इनएग्जॉस्टेबल है, अगर वो नॉन रिन्यूएबल है तो वो एग्जॉस्टेबल है। तो यहाँ पर अगर उसे रिन्यूएबल होना है यानी कि वापस से हमें मिल जाएगा, रिन्यूएबल होने का मतलब है कि वापस से हमें मिल जाएगा, उसके खत्म होने की फिक्र ही नहीं है कोई। तो ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, सन से मिल रही एनर्जी होती है या फिर बायोमास वाली एनर्जी, बायोगैस इसे हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्रिएट होता ही रहता है, आम का छिलका या फिर सब्जियों का छिलका, फ्रूट्स का छिलका। तो इस तरीके से जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसे आप काउडंग के साथ मिक्स करो और उससे आप बायोगैस प्राप्त कर सकते हो। तो बायोगैस भी एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, सारी एनर्जीज जो आपको वापस से मिल जाते हैं उन्हें आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगी उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल या फिर एग्जॉस्टेबल। और ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हो सकती हैं हमारी फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का रिजर्व्स बहुत लिमिटेड है और वो बनने में बहुत समय लेते हैं, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट नॉन रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरीके का होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से कॉमन मैन भी उसे खरीद सके, दूसरा इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है, तीसरा पॉल्यूशन कम करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट में नुकसान कम कॉज करना चाहिए, चौथा उसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ईजी हो जाना चाहिए, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा सकें और रख भी सकें, पांचवा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस करे उसको यूज करने पर वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए ताकि उसको यूज करने का हमें नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से ये क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो अगर एडवांटेज के बारे में बात करो तो सोलर कुकर का एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ एक सोलर कुकर खरीदना है, उसके बाद उसे आपको सन की मौजूदगी में रख देना है, आपका खाना आसानी से पक जाएगा, पानी अगर आपको बॉयल करना है तो वो भी बॉयल हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, अगर आप इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करो तो डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसे दिन में यूज किया तो आप इसे रात में भी यूज कर सकते हैं। आप इसे रात में नहीं यूज कर सकते, आप इसको बारिश के मौसम में यूज नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे मौसम में यूज नहीं कर सकते जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और ऐसे इलाके, धरती के ऐसे इलाके जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है और गर्मी कम, वहां पर आप सोलर कुकर नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम बात करें एनर्जी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ने का, ये है कि आपको बहुत से अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर हम बगैर सोचे समझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप सोलर एनर्जी के बारे में बात करो तो सोलर एनर्जी यूज करते के लिए आपको सोलर पैनल्स चाहिए, जिनके कंस्ट्रक्शन में हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचा देते हैं। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो उसको बनाने के लिए आपको डैम्स चाहिए, तो डैम्स को क्रिएट करने के लिए हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कर देते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की या फिर एनर्जी के सोर्सेज की, वैसे वैसे हम एनवायरनमेंट को नुकसान और ज्यादा पहुंचा रहे हैं। हम इनसेंसिटिव हो गए हैं टुवर्ड्स अवर एनवायरनमेंट, और अपने फायदे के, अपने ग्रीड के बारे में सोचते वक्त हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ह्यूजली डैमेज कर रहे हैं, जो कि वापस से उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करो तो फॉसिल फ्यूल का रिजर्व्स लिमिटेड है। जो कंट्री ज्यादा रिच है वो क्या कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रही है धरती के अंदर से, बगैर ये सोचे कि धरती को भी नुकसान पहुंचता है अगर आप उसके रिजर्व्स खाली करते जा रहे हो। तो आप जैसे जैसे सारे की सारी उसकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, उसके फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, तो आप उसको स्टोर करके रखते जा रहे हो, क्योंकि आप ज्यादा रिच हो, आप वो कंट्री ज्यादा रिच है, और जो थोड़ी सी उतनी रिच कंट्रीज नहीं है वो फॉसिल फ्यूल्स का उतना यूज नहीं कर पाते, तो उनका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी फॉसिल फ्यूल मिले और वो ज्यादा उसको यूज कर पाए। तो जिनके पास ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा हैं वो उनको इंडस्ट्रीज बनाने में यूज कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पर बनती हैं और उतना ही ज्यादा वहां पर पोल्यूशन कॉज होता है, तो इस तरीके से नुकसान होता है हमारे एनवायरमेंट को। अब अगर आप बात करो कि आप क्या क्या कर सकते हो टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आजकल हर एक व्यक्ति जो है, जैसे ही उनकी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ती है, तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि इंडिविजुअल कार खरीद लेते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन एनवायरमेंट के लिए देखा जाए तो ये नुकसानदायक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि नुकसान इंडिविजुअली आप नहीं कॉज कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही वो काम करती रहती हैं, फंक्शन तो उनका होता रहेगा हर रोज, तो आप अच्छा है कि आप उसे यूज करें बगैर, बजाय ये कि आप खुद का एक सोर्स ऑफ ऐसा डिवाइस ला देते हैं जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन कॉज करता है। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो कार पूल करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज करें। कई कई लोग क्या करते हैं कि जब वो सो रहे हैं तो लाइट्स ऑन करके सोते हैं, तो ये भी एक बुरी आदत है, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, तो इसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। लोगों को ज्यादातर खुली हवा में जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो कम करें, लोड कम पड़े हमारे गवर्नमेंट पर कि वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करें, तो इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स भी करने से आप लोगों को, आप पॉल्यूशन कम कॉज कर सकते हैं। कंपैरेटिवली आप डीजल या फिर पेट्रोल ना यूज करके आप सीएनजी यूज करें तो आप थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएंगे हमारे एनवायरमेंट को। वुड को बर्न करने से ज्यादा पॉल्यूशन कॉज होता है, तो आप एलपीजी यूज कर सकते हैं तो उससे कम पॉल्यूशन कॉज होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स यूज करके आप पॉल्यूशन कम कॉज कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आपने क्या करना है कि इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप अपने टीचर से पूछिए। आप क्या करिए कि सबसे पहले तो पूरा चैप्टर एक बार और पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है तो इसे जरूर पढ़ के जाइए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।